स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीयां विष्णुं च वरदौ आशिषां प्रभवौ उभौ भक्त्या संपूजयेत् नित्यं यदि इच्छेत् सर्वसंपदः श्रियं विष्णुं च वरदौ आशिषां प्रभवौ उभौ भक्त्या संपूजयेत् नित्यं यदिच्छेत् सर्वसंपदः प्रणमे दण्डवद् भूमौ भक्ति प्रहवेण चेतसा दस बारं जपेन मंत्रं ततः स्तोत्र मुदीरये युवां तु विश्वस्य विभु जगतः कारणं परं इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्तिर्दुरत्यया तस्या अधीश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वजज्ञेयं क्रियेयं फलभुग् भवान् गुणव्यक्तिरियं देवी व्यंजको गुणभुग् भवान् त्वं हि सर्वशरीरात्मा श्री शरीरेन्द्रियाशया नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वम् अपाश्रयः जथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा म उत्तम श्लोक सन्तु सत्या महाशिषः
च वरदौ आशिषां प्रभवाबुभौ भक्त्या संपूजये नित्यं यदीक्षेत् सर्वसंपदः
भक्ति पवन चेतसा दस्वारं जपे मन्त्रं तत श्रत मदीरते।
जगतः कारणं परम् इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्ति दुरत्यया।
त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वजगज्ञेयम् क्रियेयं फलभुग् भवान्
श्रियं विष्णुं च वरदौ आशीषां प्रवावभौ भक्त्या संपूजये नित्यं यदीच्छे सर्वसंपदः।
प्रहमेण चेतसा दस वारं जपेन मंत्रं ततः स्त्रोत्रं मुदीरयेत्। जगतः कारणं कात्परं यं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्ति दुरत्यया।
तस्य अधीश्वर साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वयज्ञ यज्ञेयम् क्रियेयं फलभुग् भवान्।
देवी व्यंजको गुणभुग् भवान् त्वं हि सर्वशरीरात्मा श्री शरीरेन्द्रियाशया नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः।
आशिषं प्रभवाबुभौ भक्ता सम्पूजयेत् नित्यं यदिच्छेत् सर्वसंपदा।
भक्ति प्रहरणेन चेतसा दश वारं जपेन मंत्रं ततः स्तोत्र मुदीरयेत्।
जुआम तु विश्वस्णु च, और भगवान विष्णु को वरदौ, दोनों वर देने वाले हैं, आशीषाम और आशीर्वादों का, प्रभव उद्गम स्थान, उभव दोनों, भक्त्या भक्तिपूर्वक, संपूजये खूब अच्छी तरह से पूजा करे, नित्यं प्रतिदिन, यदि यदि इच्छे इच्छा है, सर्वसंपदः समस्त संपत्तियों की, हिंदी में बोलिए, यदि समस्त संपत्तियों की अभिलाषा है तो श्री जी और भगवान विष्णु की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। क्योंकि यही दोनों सबकी अभिलाषा को पूरा करने वाले हैं और समस्त भोगों के जन्मदाता हैं। इनकी पूजा भक्ति से करनी चाहिए और प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रणमेत, प्रणाम करना चाहिए। दंडवत, दंड की तरह। भूमौ, भूमि पर। भक्ति प्रवेण, भक्ति से नम्र बने हुए। चेतसा, मन से। दस बार जपेत, जपना चाहिए कम से कम 10 बार। मंत्रम, मंत्र जो पहले कहा गया, और ततः इसके बाद स्तोत्रम, स्तोत्र जो यहाँ दिया गया है अथवा अन्य ग्रंथों से जो याद किया हुआ। उदीरयेत, पाठ करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नानुसार पुंसवन व्रत की विधि बता रहे हैं। तो कल चर्चा हुई थी कि किस प्रकार नमस्कार के मंत्र, पूजा के मंत्र और हवन के मंत्र बोलना चाहिए। कल इसकी चर्चा हो चुकी थी। तो फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्रियं विष्णुं च वरदौ आशिषां प्रभवौ उभौ भक्त्या संपूजयेत नित्यं जदिच्छेत सर्व संपदा। यदि सर्व संपदा इच्छेत, यदि समस्त वैभव, धन, सौभाग्य, जस आदि सब कुछ की कामना है, सर्व संपदा, समस्त संपत्तियों की इच्छा है, तो भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। श्री जी की पूजा करनी चाहिए और विष्णु की। श्रीयम विष्णु च नित्यम संपूजयेत, नित्य पूजा करनी चाहिए और भक्ति पूर्वक। इस संसार में इस समय तो शायद कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसको धन की इच्छा ना हो, है ना? ऐसा खोजने पर भी कुछ हो सकता है मिल जाए, लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे जिनको धन की इच्छा ना हो और जिनको स्वस्थ शरीर नहीं चाहिए या और भी सफलता नहीं चाहिए। जितने प्रकार के सौभाग्य हैं उसको संपद कहते हैं। पद का अर्थ होता है स्थिति और सम का अर्थ है सम्यक, उचित पद। तो उसमें धन धान्य अपने आप आ जाता है, शरीर का स्वास्थ्य, स्वजनों का प्रेम और नाम हो समाज में, जस की प्राप्ति हो, बड़ा बड़ा काम हो और अन्य प्रकार से भी दान देने की क्षमता, भावना, दान देने वाले का भी जस बहुत बढ़ता है। तो ये सब जो स्थितियां हैं इसको संपद कहते हैं। पद माने स्थिति, एग्जिस्टेंस, सम्यक स्थिति। तो प्राय आज के युग में लोग संपद का अर्थ केवल धन समझते हैं, पर सर्व संपदा, सब प्रकार की सफलता, सब प्रकार का सौभाग्य और धन, यदि इच्छे, यदि किसी को इच्छा है, इच्छा करता है, तो उसे चाहिए कि श्रियं विष्णु च भक्त्या नित्यम संपूजयेत, भक्ति से, प्रेम से भगवान की और श्री जी की पूजा नित्य करे, यदि बिल्कुल स्पष्ट है। यदि सब प्रकार का सुख चाहिए, सौभाग्य चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो भगवान का पूजन करना चाहिए। वैसे छोड़ नहीं दिया गया। आजकल के जैसे लोग पूछते कौन भगवान, भगवान दो है ही नहीं, भगवान विष्णु को कहते हैं। श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है भगवान कौन है, तो भगवान वो है जिसके चरण से गंगा जी निकली है, सीधा उत्तर है। जिसके चरण कमल से गंगा जी निकली है वो है भगवान, बाकी सब सेवक हैं। भगवान शिव ने गंगा जल को अपने मस्तक पर धारण किया, वे भगवान विष्णु के इस प्रकार सेवक। बड़े सौभाग्य की भावना से भगवान शिव ने गंगा जी के पानी को, भगवान के चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। और इसके पूर्व श्री ब्रह्मा जी भगवान के उस चरण प्रक्षालन के जल को, गंगा जी को, अपने कमंडल में रखे थे। उन्होंने भगवान के चरण कमल को धोया जब श्री भगवान त्रिविक्रम अवतार लिए थे, और बलि महाराज से जब उन्होंने भूमि दान लिया, और भूमि दान लेने के उपरांत जब विश्व को नापने लगे, तो भगवान का एक चरण सत्य लोक तक गया और यहां तक कि ब्रह्मांड का कवर फोड़ दिया, तो कारण समुद्र का जल चूने लगा इस ब्रह्मांड में, तो भगवान के चरण कमल को धो करके चू रहा था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों की पूजा की थी, तो चरणों में चंदन केसर आदि लगा हुआ था, तो श्री गंगा जी कारण समुद्र का जल, कारण समुद्र का जल चू रहा था भगवान के चरणों को धोता हुआ बड़े वेग से धारा में, तो वह थोड़ा थोड़ा पीला पीला हो रहा था। भगवान के चरण कमलों में चंदन केसर आदि लगाया गया था, उसको धो रहा था, तो सत्य लोक में वो चू रहा था, आ रहा था। तो श्री ब्रह्मा जी उस चरण जल को, चरणामृत को रखे अपने लोक में, और बाद में जब भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों को, अपने संबंधियों को तारने के लिए तपस्या किया, तब उसी ब्रह्म लोक से, सत्य लोक से गंगा जी भगवान शिव के मस्तक पर होती हुई, हिमालय से बहती हुई इस पृथ्वी पर आई भारतवर्ष में। तो ये दोनों इस विश्व में सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी, पर ये दोनों इस प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। जिसका चरण धोवन ब्रह्मा जी इस तरह रखें आदर के साथ, और भगवान शिव अपने मस्तक का आभूषण समझ करके गंगा जी को धारण करते हैं, तो उस विष्णु के अलावा भगवत पद का वाच्य कौन हो सकता है, किसको कहा जाएगा भगवान वास्तव। वैसे औपचारिकता के लिए पूजा के अर्थ में किसी में भी भगवान शब्द लगा दिया जाता है, वो दूसरी बात है, लेकिन वास्तविक अर्थ में विष्णु ही भगवान शब्द के वाच्य है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि समस्त संपत्ति की इच्छा है इस लोक में भी और परलोक में भी, सब जगह यदि सुख सौभाग्य चाहिए, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। यह कह करके अन्य की पूजा के द्वारा सर्व संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये कह दिया गया, अपने आप कह दिया गया। इस बात को समझ लेना चाहिए। हरे कृष्णा। राजेंद्र जी, सावधानी से सुनिए, आप लोग बात कर रहे हैं ना, सुनना चाहिए। तो एक बात जो कही जाती है कि श्रीयम विष्णु च, श्री की और विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जिसको भी मान ले भगवान, बस वही श्री जी और विष्णु हो गया, हमारे मानने से नहीं हो जाएगा। श्री का कुछ अर्थ है और विष्णु का कुछ अर्थ है, एक खास व्यक्ति के लिए शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। श्री की पूजा करनी चाहिए, विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और विशेष करके यदि सर्व संपत्ति की इच्छा है, चाहिए सबसे उत्कृष्ट भोग, या भगवान का पार्षद बनना हो, वैकुंठ की इच्छा हो, इसको अपवर्ग कहते हैं, या स्वर्ग की इच्छा हो, या इस पृथ्वी पर भी बहुत बड़ा सौभाग्य और सफलता चाहिए, जस चाहिए, तो बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान विष्णु की और श्री जी की पूजा करनी चाहिए। इसके द्वारा एक संस्कृत में उक्ति है कि इसके द्वारा व्यतिरेक का भी अपने आप पता चल जाता है कि श्री की पूजा करनी चाहिए और विष्णु की पूजा करनी चाहिए, इसका अर्थ है कि और कि नहीं। यदि सारी संपत्ति चाहिए तो थोड़ी थोड़ी चाहिए नाम मात्र तो दूसरी बात है। वो सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि ये इच्छा हो तो इस देवता की पूजा करे, ये इच्छा हो तो इस देवता की पूजा करे, ऐसे करे ऐसे करे, लेकिन सर्वशेष में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। अकाम सर्व काम, यदि कुछ नहीं चाहिए, निष्काम भाव से भगवान की सेवा की ही इच्छा है, उनसे प्रेम ही केवल करना है, तभी भी अगर प्रेम चाहिए तो उसके लिए भी, और सर्व काम यदि सारी कामनाएं हो हृदय में तो उन समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए भी भगवान की ही आराधना करनी चाहिए, और मुक्ति की कामना है तभी भी। अकाम सर्व काम मोक्ष काम तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति जोग के द्वारा अत्यंत तत्परता पूर्वक और प्रेम से की गई भक्ति के द्वारा भगवान परम पुरुष को ही प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। जजेत पुरुषम परम, परम सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को खुश करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं कि श्री और विष्णु की पूजा करनी चाहिए, यही वास्तव में पूज्य हैं, आराध्य हैं समस्त जीवों के। अरे जब ब्रह्मा जी और शिव जी के आराध्य हैं तो फिर अन्य देवता या मनुष्य आदि के विषय में तो कहना ही क्या है। किस प्रकार पूजा करनी चाहिए इसको पहले भी कुछ बताया गया, आगे बताया जा रहा है। सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। कहाँ प्रणाम करेंगे, इस वर्णन के पहले यह समझ लेना चाहिए कि भगवान का श्री विग्रह रखना चाहिए पूजा के लिए, जैसे आवाहन और पाद अर्घ्य आदि समर्पित करते हैं तो आवाहन का अर्थ होता है भगवान को बुलाना, लेकिन भगवान को पूजा के लिए उनके स्वरूप में उनके श्री विग्रह में ही बुलाया जाता है, प्रतिदिन बुलाया जाता है। यद्यपि वे हैं अर्चा विग्रह के रूप में, हमारी अर्चना को पूजा को स्वीकार करने के लिए ही भगवान प्रकट हैं। मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं वो मूर्ति नहीं है, उसको अर्चावतार कहते हैं। अर्चा के रूप में, मूर्ति के रूप में श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं भक्त के पूजा को, उसके प्रार्थना को, भाव को स्वीकार करने के लिए। तो ये समझ लेना चाहिए शुरू में ही कि भगवान नारायण की और श्री की पूजा करनी है तो श्री का श्री विग्रह हो या फोटो हो जो भी हो वो रखना चाहिए, उसी की पूजा की जाती है। तो श्री भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए, प्रणमेद दंडवत भूमौ। दंडवत प्रणाम का अर्थ है जैसे आप डंडा खड़ा करें ऐसे, तो डंडा को प्रणाम कराया जाएगा, प्रणाम ने झुकना, तो झुकेगा तो बीच में टेढ़ा नहीं होगा, पूरा सीधा झुकता है, बीच में मुड़ता नहीं है। तो इस तरह से दंडवत प्रणाम का मतलब हुआ कि हाथ बिल्कुल आगे जाएगा, पैर पीछे रहेगा और सीधा शरीर लेटता है, और कई जगह भूमि का स्पर्श होता है, सिर से, वक्ष से, जानू से और पैर से और हाथ से, ये पांच अंगों से जमीन का स्पर्श होता है। और कुछ बोलते हैं प्रणाम करने, इसको वत्सा कहते हैं। और पहले भगवान को देखते हैं नम्र भाव से, तो नेत्र से भी प्रणाम होता है और मन सा पांच पहले के और ये तीन, इसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं, अष्टांग प्रणाम, इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। लेकिन एक और भी प्रणाम होता है। एक बार एक संत ने इस बात को कहा था, विनोबा भावे एक बार बोले थे, सर्वोदय वाले विनोबा जी, तो वो कहते हैं कि खड़े खड़े प्रणाम कर लो, ये भी दंडवत प्रणाम है। ऐसे खड़ा रहना और कुछ कहना कि नमस्ते नमस्ते, ये भी प्रणाम है, ये दंडवत प्रणाम ये भी है, डंडा की तरह खड़ा रहना है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया भूमौ, नहीं ये आकाशौ, ये आसमान में प्रणाम नहीं करना है, भूमौ भूमि में दंडवत करना है। ये भ्रम न रह जाए किसी को कि दंडवत प्रणाम का मतलब क्या, डंडा की तरह खड़ा रह जाना, नहीं। एक तो प्रणाम हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें झुकना है नहीं, प्रणति नहीं हो रही है। तो भूमौ भूमि पर शरीर को पूरा लेटा करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, दंड की तरह प्रणाम करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि केवल नियम मान करके, भाई नियम है अब क्या करें, सब लोग कर रहे हैं तो हमको भी करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे प्रणाम होता है, जैसे हम लोगों के संस्था में अगर प्रेम ध्वनि बोलते हैं संकीर्तन के बाद, कीर्तन के बाद, आरती के बाद, तो उस समय सभी लोग, सभी भक्त जमीन पर माथा रखकर या प्रणाम दंडवत करके जय बोलते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री राधिका रमण जी की जय। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं अब तो यहाँ अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम तो उल्ला होंगे, देखते हैं कि अब क्या करें। तो कभी कभी जो बिल्कुल नए होते हैं वो तो साहस करके खड़े ही रहते हैं, लेकिन जो थोड़ा और प्रैक्टिस में आ गए हैं कई दिन से, तो वो धीरे धीरे झुकते और अब भक्तों की तरह ही करते हैं। परंतु उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो अब केवल देखा देखी करते हैं, सामाजिक के मांग है, अभी यहाँ हमारा ठीक नहीं लग रहा है दूसरे तरह से करना, इसलिए करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रणाम करे तो भक्ति प्रहवेण चेत सा, प्रहवा का अर्थ होता है नम्रता, भक्ति से भगवान के प्रति आदर भाव से और प्रेम से चित नम्र होना चाहिए, मतलब मन भी प्रणाम करे झुके। सचमुच मन में बात हो कि हमें प्रणाम करना है, तो प्रणाम करने में आनंद आना चाहिए। वास्तव में जीव के लिए यह बहुत बड़ा सुख है भगवान के सामने झुकना, तो मन में नम्रता और स्नेह से प्रेम से भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भार मान करके नहीं। ऐसे भार मान करके भी प्रणाम करे तो वो भी प्रणाम भगवान मान लेते हैं, भगवान प्रणाम का फल देते हैं। लेकिन अच्छा ये है कि बहुत आदर के साथ अपना सौभाग्य मान करके और प्रेम पूर्ण मन से भगवान को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम, प्रणामे दंडवत भूमौ भक्ति प्रहवेण चेत। भगवान को प्रणाम करना एक बहुत बड़ी भक्ति है। पद्म पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण को एक बार कोई प्रणाम करता है तो वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले से भी बढ़ करके होता है। ऐसे अश्वमेध यज्ञ में तो लाखों प्रणाम ही करना होता है भगवान को, लेकिन केवल यज्ञ आदि की बात ली जाए, केवल हवन करना और सब करना, एक तरफ कोई व्यक्ति वो कर रहा है और दूसरे तरफ कोई भगवान को प्रणाम कर रहा है, तो एक बार जो प्रणाम किया उसके साथ अश्वमेध यज्ञ की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुनर्जन्म में जा सकता है, फिर उसका जन्म मरण होगा, लेकिन कृष्ण को एक बार प्रणाम करने वाला फिर जन्म मरण में नहीं रहता है, मुक्त हो जाता है। ये भगवान के प्रणाम की महिमा है। सकृत प्रणाम किए अपनाए, भगवान के सामने कोई झुकता है तो भगवान सोचने लगते हैं इसको क्या देना चाहिए। सामान्य जगत में भी कोई बड़ा आदमी है, अगर उसके सामने कोई दीन भाव से झुके तो वो भी अपनी स्थिति के अनुसार सोचता है कि इसका कुछ करना चाहिए, बेचारे हमारे शरण में गिर गया है ना, उस जरूर सोचेगा। तो भगवान तो अपनी स्थिति के अनुसार सोचते हैं, वे तो महाउदार हैं और परम ईश्वर हैं, समस्त वस्तुओं के अधिकारी हैं, सब कुछ है। तो कोई उनके चरण में गिरता है तो भगवान अपनी स्थिति के अनुसार सोचते हैं। तो अपनी स्थिति के अनुसार भगवान सोचेंगे तो उसको मुक्त कर ही देंगे। सबसे बड़ा जो उपहार है भगवान का धाम पार्षदत्व, उसको प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान के प्रणाम की बड़ी महिमा है। और भगवत गीता में भगवान ने चार काम करने के लिए कहा है। चार काम नहीं करने चाहिए यह भी कहा गया है भागवत में, और गीता में कहा है चार काम करना चाहिए। चार काम क्या क्या नहीं करना चाहिए? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन इत्यादि। तो ये चार काम नहीं करना चाहिए और चार काम करना चाहिए, इसको भगवान कहते हैं एकदम फाइनल परम गुह्यतम बात। मन मना भव, मद भक्तो, मद्याजी, माम नमस्कार, ये चार आदेश दे रहे हैं। मुझमें मन लगाओ या मेरे मन में जो है वही तुम अपने मन में रखो, इसका भी अर्थ है। मन मना भव एक, मद भक्तो भव मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, और माम नमस्कार और मुझे प्रणाम करो, ये चार चीज बस। सर्व गुह्यतम भूय श्रृणु में परमम वच, भगवान ये कहते हैं कि सबसे गुह्यतम सबसे श्रेष्ठ बात में है अर्जुन तुमको बता रहा हूं यही है। मन मना भव, मद भक्तो, मद्याजी, माम नमस्कार, चार काम करना है, कौन सा कठिन है? भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना है। और इसका यह भी अर्थ किया जाता है मन मना भव अर्थात कृष्ण मना भव, कृष्ण का मन ही हमारा मन होना चाहिए। भगवान जो चाहते हैं वही हम करें, कृष्ण के मन के अलावा अलग हमारा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए, इसको भी मन मना भव कहते हैं, मेरे मन वाला बनो। और मद भक्तो भव, भव क्रिया वहां भी लगाई जाएगी, मन मना भव मद भक्तो भव मेरा भक्त बनो, मेरा भक्त बनो। भक्त का अर्थ है भगवान को ही अपना इष्ट देव मानना, उनको पूज्य मानना, उनको सर्वश्रेष्ठ मानना, दीन भाव से उनके शरण में रहना, यह भक्ति। अथवा भगवान के नवधा भक्ति को करना कृष्ण के प्रति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन इत्यादि, ये सब जो भी करना है मेरे लिए करो, मेरे प्रति करो, अर्थात मेरा नाम जप करो, मेरी कथा सुनो, मेरी पूजा अर्चना करो। ये सब अर्चना को तो अलग कर रहे हैं, मद्याजी, मद याजी भव, उस क्रिया को वहां लगाना पड़ेगा। याजी का अर्थ है यजन करने वाला, मद याजी भव मेरा पुजारी बनो, मेरी पूजा करने वाला बनो, अर्थात मुझे ही संतुष्ट करने के चक्कर में रहो। तुम यही सोचो रात दिन कि कौन काम करने से किस तरह से श्री कृष्ण खुश होंगे, इसको कहते हैं यजन, ये पूजा। और अंत में कहते हैं माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करो, मेरी शरण में रहो। इस प्रकार ये भगवान का चार आदेश है, चार आदेश में प्रणाम भी एक आदेश है। इस पर एक भक्त ने टीका में लिखा है कि भगवान प्रणाम करने को जो कह रहे हैं उसका क्या रहस्य है। तो पहले भगवान ने कहा मन मना भव, मुझमें मन लगाओ, तो मानो अर्जुन कह सकते हैं, या अर्जुन के तरह कोई दूसरा कह सकता है जो आजकल गीता पढ़ता है वो भी कह सकता है कि मन तो चंचल है, इसको पकड़ेंगे अपने बस में करेंगे तब ना आप में लगाएंगे, तो अपने बस में तो है ही नहीं तो आपको आप में लगाएंगे कैसे। कई भक्त ऐसे प्रश्न करते हैं, हम तो जप करते हैं लेकिन मन इधर उधर भागता है। तो ये बात तो अर्जुन भी पूछे हैं गीता में भगवान से चंचलम ही मना कृष्ण, तो मानो ये कहा जा सकता है कि कृष्ण आप तो बहुत बड़ा आदेश दे रहे हैं, कठिन है पालन करना, मन को आप में लगाना कठिन है, कैसे लगाओगे? तो भगवान ने कहा जा ठीक है, मन नहीं लगाओगे तो मत भक्तो भव, मेरी भक्ति करो, जप करो, कीर्तन करो और नाना प्रकार की सेवा है, इसे तो कर सकते हो ना, कथा सुनो, भागवत पढ़ो और सब, कई भक्ति है। तो भक्त कह सकता है कि अरे इंद्रियां तो विषयों में लगी हैं, तो हम आपकी भक्ति क्या करेंगे, श्रवण कीर्तन आदि करना भी कठिन है। तो भगवान कहता है ठीक है, ये भी नहीं कर सकते तो मेरी पूजा करो, देह से हमारी पूजा करो और कुछ सेवा करो, ये सब कर सकते हो ना। तो इस पर भक्त कह सकता है कि देह तो बहुत आलसी है, काम धंधा करने में मन नहीं लगता, इसलिए आपकी सेवा भी करना हमारे लिए कठिन है। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते हो, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम तो कर सकते हो ना, तो यही करो, केवल प्रणाम करो। इसलिए भगवान लगातार चार आज्ञा कर रहे हैं, मन मना भव, मद भक्तो, मद्याजी, माम नमस्कुरु। तो मनुष्य यदि कोई भी भक्ति नहीं कर सकता है तो कृष्ण को प्रणाम तो कर सकता है ना। कई भक्तों ने ऐसा कहा, जैसे महारानी कुंती कहती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृति परम, यह श्री कृष्ण। वो आगे कहते हैं, मैं तो स्त्री हूं, मुझे आपके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपके बारे में क्या बोलूं, मैं केवल इतना ही कर सकती हूं कि आपको प्रणाम कर सकती हूं। यही कहा है उन्होंने, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमस्ते नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। इस श्लोक की टीका में श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि मैं तो स्त्री केवल आपको प्रणाम कर सकती हूँ, यह हमारी योग्यता है, इसलिए बार बार नमः 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 कह रही हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, बारंबार नमस्कार कर रही, नमस्कार कर रही। कृष्ण को प्रणाम करने का यह स्वाभाविक अधिकार जीव को है, और यह बहुत बड़ा सौभाग्य है भगवान को प्रणाम करना। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि भक्ति प्रहवेण चेतसा, भक्ति से नम्रीभूत और स्नेहिल मन से कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। और 10 बारम जपेन मंत्र मंत्रम, और जो ऊपर मंत्र बताया गया इस मंत्र को 10 बार जपना चाहिए कम से कम, यहां अपने आप ही लगा लेना चाहिए, ज्यादा करे तो और अच्छा है, 10 बार जपना चाहिए। कितना प्रैक्टिकल है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो विधि दिया है, हम लोगों को भी जो सेकंड इनिशिएशन दिया जाता है तो उसमें जो भी मंत्र है उनको 10 बार जपने के लिए कहा जाता है, प्रत्येक मंत्र को 10 बार जपे, एक मंत्र को 10 बार जप लिए तो दूसरे मंत्र को 10 बार, तीसरे को 10 बार, इस तरह 7 मंत्र मिलते हैं तो 10-10 बार जपना होता है। कभी कभी भक्तों के मन में होता है कि और ज्यादा जपना चाहिए, तो ज्यादा जपना मना नहीं है, लेकिन इससे कम करना मना, कम ना जपे, ये स्टैंडर्ड संख्या है, 10 बार जप करे, इसके बाद सैकड़ों बार करे उसका समय हो तो कोई बात नहीं। तो यहां भी भाव यही है कि 10 बारम जपेन मंत्रम, 10 बार मंत्र का जप करे कम से कम, और इसे अधिक मना नहीं है और अच्छा है करे तो 10 बार जपेन मंत्र, 10 बार मंत्र जप करके ततः स्तोत्रम उदीरयेत, इसके बाद स्तोत्र का पाठ करे। स्तोत्र कहाँ है, आगे के 4.5 श्लोक में स्तोत्र दिया गया है, इसी को जपने के लिए कह रहे हैं। अथवा स्तोत्रम जपेत, और भी कई स्तोत्र है, जैसे ब्रह्म संहिता में है, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, उसको भी जपा जा सकता है, गाया जा सकता है। वेणुम कुणंत मर बिंद दलाय ताक्षम बरहा वतंस मसिताम बुद मसिताम बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद माद पुरुषम तमहम भजामि। इस तरह से स्तोत्र को पढ़ना, यह पाठ करना, भगवान के गुणों को बोलना एक स्वतंत्र भक्ति है। प्रणाम एक अलग भक्ति है और स्तोत्र पढ़ना भक्ति है, मंत्र जप करना भक्ति है। मंत्र जप 10 बार करने के लिए कहा गया, लेकिन ये जो इस पूजा में मंत्र है इसके लिए 10 बार कह रहे हैं। महामंत्र के लिए ये कोई ऐसी संख्या निश्चित नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी आजकल के लोगों की जो स्थिति है उसके अनुसार श्रील प्रभुपाद जी ने 16 माला जपने के लिए निर्धारित किया है। 16 माला जप करें। अब इसके अलावा जितना ज्यादा करे तो उसके लिए मना नहीं है, बल्कि स्वागत है, ठीक है करे, पर एटलीस्ट 16 माला करना चाहिए, जिसमें करने में 2 घंटा लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वास्तव में यह भी पुंसवन व्रत है। यदि कोई व्यक्ति समस्त संपत्तियों को चाहता है, सौभाग्य को चाहता है, तो उसे भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह महामंत्र है। महा का अर्थ सभी समझते ही हैं, दी ग्रेट, सबसे बड़ा। और मंत्र का अर्थ है मन को तारने वाला, मन को पवित्र करने वाला, जो प्राकृतिक धरातल से मन को भगवान के लीला में पहुंचा दे, स्पिरिचुअल जगत में पहुंचा दे। तो यहां पर मंत्र का अर्थ ये हुआ महामंत्र के संबंध में। इसके जपने से, आवृत्ति से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और भगवान के स्वरूप की जो हृदय में स्फूर्णा होगी, भगवान का जो स्मरण होगा, वो तो अलग फायदा है, सबसे बेस्ट है। लेकिन नाम का उच्चारण जीभ से करना, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं कि अरे इसका फल कब आएगा? ये महामंत्र स्वयं ही फल है, जीभ पर आ रहा है, यही सबसे बड़ा भाग्य है, यही वास्तव में सबसे बड़ी सफलता है, किसी तरह जीभ पर आ रहे। कई भक्तों के द्वारा ये प्रश्न होता है कि हम तो मन जप तो करते हैं, मन इधर उधर भागता है, मन नहीं लगता है। तो मन लगे या ना लगे, ड्यूटी है जीभ से बोलना, यही कहा गया है ना। दीक्षा के समय तो यही कहा था, ठीक है चैंट 16 राउंड्स, तो 16 माला जप हो, ये तो नहीं कहा जाता है कि मन लगा करके तब जप हो। मन लगा लेना ये मनुष्य के अपने अधिकार की बात नहीं है, मन लगेगा नहीं ये श्योर बात है, मन जहां लगा है वहीं लगेगा, इसलिए जीभ को लगाना है। और कोई ऐसा प्रश्न करता है मन नहीं लगता है, तो ठीक है मन नहीं लगता है, कौन कहता है तुमको कि मन लगाओ, जीभ लगाए हो ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई व्यक्ति इस तरह से जीभ को इंगेज करके देखे कि उसका मन क्यों नहीं लगेगा भगवान में, वो श्योर लग जाएगा। बात है कि जप में ठीक से आदमी उच्चारण नहीं करता है, इसीलिए मन इधर उधर भागता है। यदि नाम का उच्चारण किया जाए तो ऐसा कहा गया है कि सेवनन मुखे ही जिह्वा दौ स्वयं एव स्फुरत्यद। भगवान का रूप है और भगवान का नाम गुण आदि जो भी है, वह सेवनोन्मुख जीव के जिह्वा आदि पर अपने आप स्फुरित होता है, अपने आप। तो सेवनोन्मुख होना चाहिए, ये हृदय में लालसा होनी चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में उदित हों, हृदय में उदित हो, तो सेवनोन्मुख होगा। सेवनोन्मुख का अर्थ क्या है, वो नाम का उच्चारण करना चाहेगा, तो जब वो नाम का उच्चारण करना चाहता है तो वह नाम स्वयं ही उस भक्त के जिह्वा पर आकर स्फुरित होने लगता है। यदि हृदय में लालसा है कि मैं जप करूं, तो वास्तविक स्थिति यह है कि प्राकृत जिह्वा से भगवान के नाम को पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन जब कोई भक्त चाहता है कि मैं भगवान का नाम बोलूं, तो नाम स्वयं ही स्फुरत्यादः स्वयं स्फुरित होता है जिह्वा पर, और भगवान का वह दिव्य अप्राकृत रूप भी हृदय दर्पण पर अपने आप प्रतिफलित होने लगता है। केवल भगवान देखना चाहते हैं, लालसा, भले मन लगा हो या न लगा हो, लेकिन लालसा होती है कि मैं जप करूं, मैं भगवान का चिंतन करूं, तो भगवान का रूप, भगवान का नाम आदि अपने आप इंद्रियों पर स्फुरित होने लगता है। नहीं तो प्राकृत इंद्रियों में क्या शक्ति है भगवान का नाम लेने की, पर भगवान का नाम आता है। जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह नाम भगवान की कृपा है कि तुरंत स्फुरित होते हैं, आ जाते हैं जिह्वा पर। वास्तव में अप्राकृत भगवान का नाम इस जिह्वा को ही अप्राकृत बना देता है, स्पिरिचुअल बनाता है और स्वयं स्फुरित होता है। तो जिह्वा पर भगवान का नाम आना यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। मन लगे या खाक में पड़े उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और मन किसका लगता है, बहुत कम मन लगता है संसार में, लेकिन ये देखना चाहिए कि जिह्वा पर नाम है कि नहीं। अगर जिह्वा पर नाम है तो मीटर ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर माला हाथ में है और जीभ चुपचाप है और कहे कि हम मानसिक जप कर रहे हैं, तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब जीभ ही बस में नहीं है तो मन क्या बस में होगा, बताइए। किसी को कहा जाए कि इस घोड़ा को काबू में करो, ये एक घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, इसको कंट्रोल करो, और वहीं पर कहा जाए कि एक और घोड़ा है जो 1 घंटे में 1 करोड़ किलोमीटर जाता है, उसको कंट्रोल में करो, किसको कंट्रोल में करना आसान होगा? जो कम स्पीड से चलता है वो अगर पकड़ना होगा तो हो सकता है उसको पकड़ा जा सकता है, और जो ऐसे बस पकड़ने चलो और 1 मिनट में लाखों माइल भागे तो उसको कैसे पकड़ पाएंगे? लोग कहते हमारा मन नहीं लगता है, अरे जीभ लगी है ना, ये देखना चाहिए कि जीभ लगी है कि नहीं। अगर जीभ लगी है तो झक मार करके मन को आना पड़ेगा अंदर, वो जाएगा कहाँ? परंतु बोलना तो चाहिए ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही सौभाग्य है। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 10 बार मंत्र का जप करें और इसके बाद स्तोत्र पढ़े। मंत्र भी जपना है, भगवान का नाम भी जपना है, और इसके बाद स्तोत्र भी पढ़ना है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यह भागवत में अनेक स्तुतियां हैं भगवान की, कई स्तोत्र हैं, भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम इत्यादि, श्रीपा शंकराचार्य का बनाया हुआ है। यह जगन्नाथ जी का स्तोत्र है, जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवत में, कई प्रकार का स्तोत्र है। तो स्तोत्रम उदीरयेत, ये और स्तोत्र याद नहीं है तो यहाँ 4.5 श्लोक में स्तोत्र दिया गया है, इसी को पढ़े, इसको पढ़े, फिर पूजा करे, फिर 10 बार मंत्र जप करे, इसको पढ़े, ऐसे लगातार करना चाहिए। तो क्या है स्तोत्र, अब सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं, युवां तु विश्वस्य विभु जगतः कारणं परम इयम् हि प्रकृति सूक्ष्म माया शक्ति दुरत्या। कभी कभी स्तोत्र की बात समझ में न भी आवे तब भी पढ़ना चाहिए, भगवान का गुण टकराता है उन शब्दों में, भगवान का गुण सन्निहित होता है, उनका रूप, उनका नाम, उनका चरित्र, लीला आदि उसमें रहता है, तो अनजान में भी वो भक्तों के हृदय में स्फुरण चालू कर देता है। पढ़ना चाहिए। अपना कर्तव्य यही है कि हम जप करें, हम पढ़े, गावे। जुआ भी विश्वस्य विभु, ये गुण है भगवान का। आप दोनों ही विश्व के विभु हैं। विभु का अर्थ होता है जो विशेष रूप से हो गया है। समस्त जगत में आप दोनों व्याप्त हैं, यह अर्थ हुआ। आप दोनों श्री जी और श्री भगवान, ये दोनों विश्व के कण कण में व्याप्त हैं। वस्तु के रूप में भी है, उपादान भी है। वास्तव में भगवान ही भूमि के रूप में बने हुए हैं। भगवान की शक्ति भूमि के रूप में परिणत है, वृक्ष के रूप में या कीट पतंग पशु पक्षी आदि के रूप में। भगवान की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है दोनों इस विश्व के विभु हैं, अर्थात सर्वव्यापक हैं। जितनी वस्तुएं हैं उसके रूप में भगवान ही हैं। भगवान के अलावा और किसी की सत्ता नहीं है। और जगतः कारणम परम, विश्व के विभु हैं आप दोनों और जगत के परम कारण हैं। जगत में और विश्व में क्या अंतर है? थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जगत का अर्थ है जीव समुदाय और विश्व का अर्थ है जीव आदि के साथ यह चर, ये जो विश्व है जैसे आकाश जल अग्नि वायु और इन पांचों महाभूतों के मिश्रण से बना हुआ है, जैसे पर्वत नदी मनुष्यों का शरीर देवताओं का शरीर इत्यादि, इसको विश्व कहते हैं। और जगत, जगत का अर्थ होता है जीव। समस्त जीव समुदाय के आप ही परम कारण हैं। आप दोनों परम कारण हैं। परम कारण का अर्थ ये है कि आपका कोई कारण नहीं है, आपका कोई ओरिजिनल मूल दूसरा नहीं। आप स्वयं सिद्ध वस्तु हैं दोनों और आप दोनों से सारा जीव समुदाय उत्पन्न हुआ है, सबकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहा जाता है कि नारायण के अलावा पहले कोई नहीं था। नारायण से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी से भगवान शिव का जन्म हुआ, उनके आंखों से जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने फिर विश्व सृष्टि किया, अनेक जीवों को उत्पन्न किया। मरीचि आदि पुत्रों ने बहुत उत्पन्न किया और फिर उनके पौत्र ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप जी ये सब सृष्टि किए। ब्रह्मा जी के कई पुत्र हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी के समान ही मानसी सृष्टि किया, इस विश्व को बढ़ाया। इसलिए आज भी हम लोगों के भारत में वैदिक गणना के अनुसार कि कोई पूछे किसी से कि तुम्हारा पूर्वज कौन है, गोत्र क्या है, तो गोत्र आप देखेंगे कि प्रायः ब्राह्मण गोत्र हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र आदि सृष्टि किए। तो किसी का अंगिरा गोत्र है, किसी का अत्री गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है ना। अब किसी से भी देखिए, किसी से भी पूछिए यदि उसे वास्तव में ज्ञान है अपने गोत्र का, वंश प्रवर्तक का, तो किसी न किसी ब्राह्मण का नाम बताएगा। वास्तव में इस विश्व की सृष्टि ब्राह्मणों ने ही की है और बाद में जो भी हुआ इस प्रकार के सामाजिक व्यवस्था दी गई, लेकिन सृष्टि के मूल हैं भगवान और भगवान के बाद ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बाद उनके पुत्रगण। इन सब के कारण हैं, ब्रह्मा जी के भी कारण हैं श्री भगवान, लेकिन श्री भगवान का कोई कारण नहीं है। विष्णु का कोई कारण नहीं है, मतलब उनका कोई मूल नहीं है, वो स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। तो इस प्रकार से कहा कि जगतः कारणम परम, आप दोनों इस जगत के समस्त जीव समुदाय के परम कारण हैं, सर्व कारण कारण। इयम ही प्रकृति सूक्ष्म माया शक्तिर दुरत्यया। और श्री भगवान से बात कर रहा है भक्त, श्री विग्रह के सामने प्रणाम करते हैं, तो भगवान के लिए तो तोम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि आप ऐसे हैं और ये हैं, ये श्री जी क्या हैं, ऐसे भगवान से ही बात की जा रही है। और ऐसा नहीं कहा जा रहा था कि हे लक्ष्मी जी आप ये हैं, लक्ष्मी जी से बात नहीं कर रहा है भक्त, भगवान से बात कर रहा है। पहले द्विवचन में दोनों के लिए कहते हैं, जुआम ही विश्वस्य विभु जगतः कारणं परम। अब कहता इयम ही प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्तिर दुरत्या, और आपके बगल में आपके बाएं भाग में जो स्थित हैं श्री जी, ये क्या है? ये भगवान से बात की जा रही है। इयम ही, इयम का अर्थ यह स्त्री, स्त्रीलिंग वाचक शब्द है इयम, और पुरुष में अयम शब्द होता है इयम। ये जो श्री हैं, ये आपकी दुर्गेय शक्ति है, प्रकृति है, और इनको ही माया शक्ति कहा जाता है। अर्थात ये आपकी सूक्ष्म शक्ति है, स्वरूप शक्ति, और इन्हीं का बहिरंग प्रकाश माया शक्ति माना गया है, जो दुरत्यया इनको पार करना बहुत कठिन है। दूह अति अय, अय का अर्थ आना, अति मतलब पार, पार आना या पार जाना, और दूह का अर्थ कठिन। भगवान की माया शक्ति दुरत्य है, इस बात को स्वयं भगवान ने स्वीकार किया है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती ते, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती ते, मेरी जो ये बहिरंगा शक्ति है माया शक्ति, इसके तीन गुण हैं और यह दुरत्य है किसी के लिए। जो मेरा भक्त नहीं है, मुझे समर्पण नहीं किया है, वो कभी भी इसके चंगुल से मुक्त नहीं हो पाएगा। कौन छूटते हैं इस माया से? तो मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही जो प्रपत्ति लेते हैं, मेरी शरण में आते हैं, वही इस माया को पार पाते हैं। माया छोड़ देती है जब देखती है कि ये कृष्ण का भक्त हो गया, तो माया छोड़ देती है, अपने आप छोड़ देती है, अन्यथा दुरत्या है। इस माया शक्ति को सूक्ष्मा और दुरत्यया कहा जा रहा है। सूक्ष्मा से तात्पर्य है स्वरूप शक्ति, और दुरत्यया माया शक्ति से तात्पर्य है बहिरंगा शक्ति। श्री जी ही बहिरंग प्रभाव से माया शक्ति का कार्य करती हैं, और अंतरंग जो उनका स्वरूप है वह है योग माया, स्वरूप शक्ति। तस्या अधि स्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः, उस माया शक्ति के या स्वरूप शक्ति के आप ही साक्षात अधीश्वर हैं, स्वामी हैं। इस माया शक्ति के द्वारा विश्व में जो कुछ भी रचना की गई है, जो कुछ भी बनाया गया है, सबके स्वामी हैं भगवान। जब साक्षात माया शक्ति के ही स्वामी हैं, तो माया के द्वारा उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं के भोक्ता हैं, स्वामी। तो भगवान से डायरेक्ट भक्त कह रहे तुम ही तस्या, तुम ही साक्षात अधीश्वर, आप ही साक्षात अधीश्वर हैं। अधीश्वर का भी एक अर्थ है, अधीश्वर का अर्थ है अधिकार पूर्वक ईश्वर, और उसका अर्थ होता है स्वयं वे ईश्वर हैं। ऐसा नहीं है कि वोट देकर के 5 साल के लिए ईश्वर बना दिए गए, स्वयं अधीश्वर है अधिकार पूर्वक स्वरूप से। ऐसा नहीं कि आज मान लीजिए 2-4 हजार वर्ष के लिए भगवान विष्णु माया के मालिक हैं इस विश्व के, और इसके बाद वो कोई दूसरा होने वाला है, ऐसा नहीं है। सदा स्वामी है, अधीश्वर इसको कहते हैं, अधिकार पूर्वकम ईश्वर, ये स्वरूप है भगवान का। इस बात को जानना चाहिए कि वास्तव में माया शक्ति के द्वारा उत्पन्न की गई इन समस्त वस्तुओं के अधीश्वर कौन है, कौन है स्वामी, उपभोक्ता। वैसे तो रचयिता भी भगवान ही है, लेकिन कंट्रोलर या उपभोक्ता, ये भोक्ता, उपभोक्ता नहीं है। तो ये उप शब्द भी लगाया जाता है कभी कभी, लेकिन भगवान सीधा कहते हैं भोक्ता भर्ता महेश्वर, मैं इस विश्व का भर्ता हूं और मैं भोक्ता हूं और महाईश्वर हूं मैं हूं। इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। और तरह से मान लीजिए कोई भगवान को न जाने, भाई ये न जाने कि विश्व को किसने उत्पन्न किया, लेकिन विश्व किसके कंट्रोल में है इतना तो जानना चाहिए, और केवल इस विश्व का थोड़ा सा ज्ञान हो, संसार का ज्ञान हो और इसके मालिक का ज्ञान न हो तो बहुत भारी अज्ञान माना जाएगा। तो कोई व्यक्ति कहीं घर लेना चाहता है तो जा करके किसी घर को फ्लैट को नापने लगे और लोगों से पूछे इसमें कितना सीमेंट लगा, इसमें छड़ कितना लगा, कौन कौन मिस्त्री लगे थे, कितने दिन बनाने में लगा और मैं इस घर में रहना चाहता हूं बस। तो सबसे पहले तो उसे पूछना पड़ेगा कि घर है किसका, चाहे जितना सीमेंट लगा हो छड़ लगा हो, इससे कोई जरूरत नहीं है पूछने की। मालिक का पता लगाएगा कि इसका कंट्रोलर कौन है, प्रोप्राइटर कौन है, उससे हमें घर लेना है। लेकिन कोई व्यक्ति मालिक का पता न लगावे और कहे कि नहीं हमें रहना है, हम जान गए ना कि इतनी लंबाई चौड़ाई है और इतना मसाला लगा हो गया, जानकारी काफी हो गई, हम रहेंगे, तो क्या उसको रहने दिया जाएगा। इसी तरह आजकल के वैज्ञानिक हैं, इस विश्व में अनेक प्रकार से प्रकृति काम कर रही है, नेचर काम कर रही है, कोई भी चीज ये आविष्कार कर लेना, ये आविष्कार कर लेना, ये आविष्कार कर लेना, ये आविष्कार कर लेना। तो वह कैसा है आविष्कार, जैसे किसी घर में बिजली फिट कर दी गई है, स्विच भी लगा दिया गया है और दूसरे लोगों को पता नहीं है कि इसमें प्रकाश कैसे आएगा। तो कोई व्यक्ति जाकर के स्विच ऑन कर दिया तो उसको कहा जाएगा साइंटिस्ट, कितना बड़ा आविष्कार किया, बाप रे बाप, कितना बड़ा आविष्कार किया है, तो घर अंधकार में डूबा हुआ था, इसने प्रकाश भर दिया। वो कुछ नहीं किया है, केवल कहीं से स्विच टच कर गया है, तो उसको साबिशी दी जाएगी क्या। मान लीजिए संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हो, एक दो साल से घर में अंधकार पड़ा है, किसी को पता नहीं है और कोई व्यक्ति स्विच ऑन कर दिया, बिजली तो पहले से ही फिट है, पहले से सब कुछ है, तो कोई भी व्यक्ति क्या उसको कहेगा कि वाह रे साइंटिस्ट, वाह रे वैज्ञानिक, आविष्कार कर दिया। और आविष्कार का अर्थ भी क्या है, आविहिकार, आविष्कार, प्रकट कर दिया, यही अर्थ हुआ ना आविष्कार का, यही अर्थ हुआ। नया कुछ क्रिएट नहीं किया, कुछ बनाया नहीं, जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो कौन किया था, कोई है, न्यूटन, हाँ। तो उसने देखा किसी फल को गिरते हुए तो सोचा कि जमीन पर ही क्यों गिर रहा है, ये उदराकाश में क्यों नहीं चला जा रहा है, तो उसने ये पता लगाया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसमें कोई महाचुंबकीय गुण है जो किसी वस्तु को इधर खींच रहा है और ठीक इस पृथ्वी के नीचे, मान लीजिए अमेरिका आदि देश हैं, तो वहां जो वस्तु गिरेगी आकाश में तो भी इस पृथ्वी पर ही खींचेगी और वहां पर वही ऊंचा लग रहा है वो आकाश, तो चारों तरफ से पृथ्वी पर कोई चीजें गिर जाती हैं। इसका मतलब इसमें बहुत बड़ा आकर्षण शक्ति है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही कहते हैं, गामा विश्व च भूतानि धार्यामि हम वो जैसा, मैं इस पृथ्वी में आकर्षण शक्ति के रूप में विद्यमान हूं और इस पृथ्वी पर मैं सभी चीजों को धारण कर रहा हूं, पृथ्वी में स्वयं आविष्ट होकर के जीव पालन कर रहा हूं, पेड़ पौधा उगा रहा हूं, ये दे रहा हूं, वो दे रहा हूं और सब चीज इस पर अवस्थित। तो कुछ नया काम उसने नहीं किया, पता लगा लिया कि हाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मूल स्रोत कौन है, कौन महाचुंबक है, वो है कृष्ण, महाआकर्षक, कर्षती इति कृष्ण, जो खींच ले सबको, आकृष्ट कर ले, उसको कृष्ण कहते हैं। सभी विषय में श्री कृष्ण परम आकर्षक हैं, चाहे ज्ञान, बल, वैराग्य, ऐश्वर्य, किसी भी विषय में श्री कृष्ण आकर्षक, इसीलिए इनको कृष्ण कहते हैं। तो ये सब चीजें भगवान ने पहले से भर करके रखा है इस पृथ्वी पर। बुद्धिमानी इसी में है कि सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि इसका प्रोप्राइटर कौन है, इसका मालिक कौन है इस संसार में। और यद्यपि मनुष्य समाज में यह एक सामान्य धारणा है कि भगवान है, शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, मालिक है, ऊपर वाला देख रहा है, कभी कभी कहते भी हैं, देखो ऐसा गलत मत बोलो, ऊपर वाला देख रहा है। तो ऊपर वाला देख रहा है तो ऊपर वाला का क्या नाम है, क्या रूप है, किस घर में रहता है और उसका फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, ये भी पता होना चाहिए ना। ऊपर वाला देख रहा है तो ऊपर तो एक गिद्ध भी उड़ता है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला कोई व्यक्ति है ना, ये जरूर बात है कि भगवान ऊपर रहते हैं, ऊपर रहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है लेकिन सामान्य तरीके से घटना हुई थी। हमें याद है बचपन में हम लोग जब खेल करते थे कभी कभी, तो खेल में अगर कोई लड़का कुछ बेईमानी करता था तो उसको दूसरे लड़के कहते थे, गंगा की तरफ हाथ करके बोलो तो ऊपर हाथ करके बोलो। गंगा जी ओरिजिनल तो गंगा जी ऊपर ही रहती है ना, और बाद में पृथ्वी पर आई तो भगवान के तरफ हाथ करके बोलो, ये खेल खेल में बात होती थी, भगवान के तरफ हाथ करके बोलो। तो अगर उस लड़के को झूठ बोलना होता था तो ऊपर हाथ नहीं करता था, अरे नहीं तो समझ लिया जाता था कि झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं बोल सकता था हाथ ऊपर करके। या कभी कभी हम लोग कहते हैं, अभी भी गांव के लड़के कहते हैं, छाती पर हाथ रख के बोलता, ये बात छाती, यहां तो भगवान रहते हैं, सर्वस्व चाहन हृदय सन्निविष्ट, तब भगवान के पास हाथ रख करके कैसे झूठ बोलेगा। कभी कभी हम लोग कहते थे, नहीं नहीं तुम छाती पर हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रख छाती पर, न रखो, हाथ पीछे कर लेते। आजकल के तो इतने बेईमान लोग हैं, भगवान पर रखवाओ चाहे दुनिया पर रखवाओ, रहकर झूठ बोल रहे। यह हमारा कल्चर है, संस्कृति है, बच्चों में भी भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास भरा हुआ रहता था, खेल खेल में भी वे झूठ नहीं बोलते इस तरह। तो यह बात सुसिद्ध है कि भगवान इस जगत के मालिक हैं, इतना इसमें विवाद नहीं है। यह दुनिया का कोई भी धर्म मानने वाला इस बात को मानता है कि वास्तव में भगवान मालिक है, यह भगवान है, लेकिन भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, इस विषय में बहुत भेद है, बहुत मतभेद है। उसी को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है कि विष्णु ही वास्तविक ईश्वर हैं, वही स्वामी हैं इस प्रकृति के, इस माया शक्ति के, त्वमेव अधीश्वर और साक्षात अधीश्वर। ऐसा नहीं कि भगवान किसी दूसरे के द्वारा इस विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं, एक एक जीव के हृदय में भगवान है। ऐसा वे नहीं कहें कि ब्रह्मा जी आप कंट्रोल कीजिए जीव के हृदय में रह करके, उसको आप सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में हूं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इसको डायरेक्ट कंट्रोलर कहते। भगवान है इस शरीर में तब ये शरीर काम कर रहा है। तो इस तरह से इस विश्व की जो भी वस्तुएं हैं उसके स्वामी हैं श्री कृष्ण, विष्णु स्वामी हैं। इस बात को समझना चाहिए, इस तरह से गीत गाना चाहिए कि हे प्रभु आप ऐसे हैं और श्री जी आपकी शक्ति हैं, ये माया शक्ति हैं, यही इस प्राकृत जगत को उत्पन्न करती हैं और अप्राकृत जगत में भी यही कंट्रोलर हैं स्वरूप शक्ति के रूप में, और इस प्राकृत जगत में बहिरंगा शक्ति के रूप में हैं और दुरत्ते हैं, इनका पार पाना आपके अभक्तों के लिए बहुत कठिन है, दुरत्ते हैं, लेकिन जो कोई भी सौभाग्य से आपकी शरण लेता है, आपका नाम जप करता है, आपको प्रणाम करता है, तब वो माया से मुक्त हो जाता है। कितना सीधा सीधा वाक्य है, भगवान कहते हैं कि दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्ते, यह दैवी अलौकिक शक्ति से युक्त मेरी माया है त्रिगुणमयी, ये दुरत्य है। पर किसके लिए दुरत्य है, जो मेरे भक्त नहीं है उनके लिए दुरत्य है, बाकी मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्तिते, जो मेरी शरण लेते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। अब इससे ज्यादा सरल क्या उपदेश होगा? और माम एव, मेरी ही शरण जो लेते हैं वो माया से छूटते हैं। ऐसा नहीं किसी की भी शरण लो और माया छोड़ दे, नहीं नहीं, ये माया इतनी कमजोर नहीं है। देवता लोग तो यहां तक कहे हैं, भगवान से ही कहे कि हे प्रभु, आपके चरण शरण को छोड़ करके कोई व्यक्ति यदि अन्य देवताओं की उपासना करके संसार से छूटना चाहता, जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है, तो वह वैसा मूर्ख है जैसे कोई व्यक्ति कुत्ते की पूंछ पकड़ करके महासागर पार करना चाहे। किसी व्यक्ति के मन में मान लीजिए समुद्र पार करने की इच्छा हो और पास में कोई कुत्ता आकर के पानी पी रहा हो और थोड़ा सा नहाने के लिए थोड़ा किनारे जाए दो चार फीट, तो सोचे कि इसकी पूंछ पकड़ करके मैं पार हो जाऊंगा। स्व लांगुने नाते तितर्थ सिंधुम, तो क्या वह व्यक्ति समुद्र पार कर पाएगा? वह व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, वो कुत्ता पार करेगा क्या समुद्र? दो चार सौ मीटर जाते जाते गज से डूब कर मर जाएगा अपने आप, तो उसकी पूंछ पकड़ करके कोई कैसे पार हो पाएगा? तो इस प्रकार की नासमझी बहुत लोग करते हैं और सीधे भगवान की शरण न लेकर के हमको ये गुरु पार कर देगा, तो ये बाबा पार कर देगा, ये पार कर देगा, ये देवता पार कर देगा, ये सब डूबेंगे मरेंगे, काहे को पार करने जाए? वो अपने को पार करने यही काफी है और दूसरे को क्या पार करेंगे? तो पार करना है तो कोई सुदृढ़ जहाज चाहिए, पानी का जलयान, नौका चाहिए, और उस नौका को खेने वाला जानकार चाहिए कि कहाँ समुद्र, कहाँ भवसागर की धारा कैसी चल रही है। नहीं जानकारी न हो तो कुछ शिष्यों के साथ आदमी ऐसे ही डूब जाता है जैसे टाइटैनिक डूब गया जहाज, है ना? पर अपने प्रथम यात्रा में ही डूब गया और संसार के बहुत महत्वपूर्ण लोग जीवन खो बैठ अटलांटिक महासागर में। एक जगह ऐसे गया जहाज जहां पर धीरे धीरे उसका अगला सिरा नीचे होने लगा, ये ऐसा लिखा गया था, मैं पढ़ा था, नीचे होने लगा अगला सिरा, वहां क्या था कि बहुत भारी भंवर पड़ रही थी अटलांटिक महासागर में, बहुत बड़ी समुद्र की भंवर, तो समुद्र जैसे बहुत विशाल, और उसमें वो फंस गया और जब धीरे धीरे नीचे होने लगा सिर तब हाहाकार मचने लगा, अब तो डूबेगा डूबेगा, लेकिन अब वहां कौन बचाने वाला था? डूबेगा, कुछ गुरु लोग अपने पूरे शिष्यों के साथ डूबेंगे ये निश्चित है। तो वो तो खैर जहाज पर बेचारे डूबे थे, लेकिन आजकल के लोग तो कुत्ते की पूंछ पकड़कर कुत्ता के साथ डूबेंगे तो कोई भी थोड़ा भी पार नहीं हो सकते हैं, थोड़ा भी सदगुण नहीं आ सकता। अगर पार होना है तो भगवान कृष्ण के चरण शरण को ही नौका कहा गया है। पदपाद पोते न महत कृते न कुर्वंत गोवत्स पदम भवाद्धि, भगवान का नाम ही वास्तविक नौका है। भवर समुद्र हरिपद नौका बिन कोई न उतरे पार, सूरदास जी लिखे हैं कि इस भव समुद्र में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका के बिना कोई पार नहीं करेगा। ये जो मन और ये जो लोगों के मन में है कि हमको ये हमारा इष्ट पार करेगा, ये पार करेगा, इसकी आराधना कर रहे हैं, उसी की आराधना कर रहे हैं, अरे वो अपने को पार नहीं कर पाएगा, दूसरे को क्या पार करेगा? यहां पर यही बात स्पष्ट बताई जा रही है, अधीश्वर वही अधीश्वर है, जीव के जन्म मरण के पार करने के या भोगों के जिलाने खिलाने के सबके स्वामी है वो संपूर्ण माया शक्ति के नेचर के वो स्वयं अधीश्वर। तुम सर्व जग इजयम क्रियम फल भुग भवान, आप समस्त जग हैं और जग की क्रिया ये लक्ष्मी जी हैं, और आप यज्ञ फल भोगता है और क्रियाएं हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति कार्य करती है लेकिन इसके भीतर सारी शक्ति भगवान दे रहे हैं और इस प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं के भोक्ता भगवान है, स्वामी भगवान है, प्रोप्राइटर है, इंजॉयर है। गुण व्यक्ति रियम देवी व्यंजको गुण भोग भगवान, यह देवी श्री जी सत्व रज तम आदि गुणों की अभिव्यक्ति है, अर्थात इनसे व्यक्ति होती है। यदि व्यंजको गुण भोग भगवान, वास्तव में गुणों को अभिव्यक्त करने वाले गुणमयी माया है और आप गुणों को व्यक्त करते हैं और गुणों के भोक्ता भी आप हैं। गुण भोग भगवान किसी, यह गुण भोग का मतलब है गुणों के भोक्ता, अर्थात वास्तविक स्वामी, वास्तविक प्रोप्राइटर, अधिकार। जैसे किसी कारखाने में, दुकान में कई सेवक होते हैं, काम करते हैं, लेकिन वास्तव में उस फर्म के फल का भोक्ता मालिक होता है, और चाहे घाटा हो नफा हो जो भी हो वही उसका मालिक होता है। दूसरे लोग काम करने के लिए होते हैं, तो यहां बताया जा रहा है कि प्रकृति काम करती है वही भगवान की शक्ति से, लेकिन प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं के वास्तविक भोक्ता श्री भगवान है। तुम ही सर्व शरीर आत्मा, श्री ही शरीर इंद्रियाशय, समस्त शरीरियों की आत्मा आप हैं। समस्त शरीरों में जो चेतना है, जीव में चेतना का संचार हो रहा है, वो श्री भगवान है, और श्री जी शरीर इंद्रिय और आशय है, चेतना नहीं, माया के रूप में। नाम रूपे भगवती प्रत्यस्तम उपाशय, इस संसार में जो भी नाम और रूप देखा जाता है यह वास्तव में भगवती आपकी माया शक्ति है, माया ही नाम और रूप को पैदा की है, और आप प्रत्यय तुम अपाश्रय, इन सब के आश्रय आप हैं। आपके भीतर यह सृष्टि हुई है, आपके भीतर सृष्टि फल फूल रही है, आप ही आश्रय हैं। और अंतिम श्लोक में भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप दोनों स्त्रीलोक के वरदानी हैं और परमेष्ठी हैं, परम अधिकारी के रूप में आप स्थित हैं। जुआम जथा जुआम त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ, वरदौ वर का अर्थ किसी के मनोरथ को पूरा करने वाला, देने वाला। तो आप दोनों, यह सत्य बात है, जथा का अर्थ बिल्कुल सत्य बात है, जैसे आप दोनों इस जगत में समस्त जीवों को वर देने वाले हैं, वर दो, क्योंकि परमेष्ठिनौ, समस्त वस्तुओं के आप ही दोनों सुप्रीम अधिकारी हैं। तो इस बात के अनुसार जब आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे वरदानी हैं, तो इस सत्य के अनुसार हे उत्तम श्लोक, हमारे भी मनोरथ सत्य हो। आप दोनों सत्य हैं और सत्य ही इस जगत के समस्त वस्तुओं के अधिकारी हैं, और अधिकारी के साथ ही साथ आप वास्तव में कृपालु दाता हैं, और आप उत्तम श्लोक हैं, आपका जस परम पवित्र है, प्रकृति के तम से परे है। तो हे प्रभु, जैसे आप उत्तम हैं, आप जैसे दाता हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो हमारे मन में जो भी मनोरथ हो रहा है वो सत्य होना चाहिए। आप जैसे सत्य है वैसे ही हमारे मनोरथ भी सत्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि हे प्रभु, आप, हमें विश्वास है कि आप हमारे मनोरथों को अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि ये सत्य है कि आप ही मनोरथ पूरा करने वाले हैं और आप ही दोनों अधिकारी हैं समस्त वस्तुओं के, तो मेरा मनोरथ निश्चित सत्य होगा, क्योंकि देने वाला दाता है, कृपणता नहीं है, प्रेम है और अधिकार भी है, सारा सब कुछ आपके हाथ में है और आपको देने की भी प्रवृत्ति रहती है। तो मुझे निश्चित विश्वास है कि हे प्रभु, आपके गुण जैसे सत्य हैं वैसे हमारे मनोरथ भी सत्य होंगे, ये सहज विश्वास। इस प्रकार से भगवान की स्तुति की गई। इत्यभिष्टु ये वरदम श्रीनिवासम श्रीयासः तन्निसार्जोपहरणं दत्त्वा आचमनमर्चेत से पहले कहा गया था भगवान की पूजा की बात, तो बीच में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार भगवान को प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करने के बाद मंत्र जपना चाहिए, मंत्र जप करके तब स्तोत्र पढ़ना चाहिए। ये स्तोत्र पढ़ते हुए ही किसका स्तोत्र पढ़े तो श्रीनिवासम श्रिया सह, श्री के साथ श्रीनिवास का स्तोत्र पढ़ना है। ये बार बार ये बात यहां लिखी जा रही है, सुखदेव जी बोल रहे हैं श्री के साथ श्रीनिवास, श्रीनिवासम श्रिया सह, श्री के साथ श्रीनिवास की इस तरह से पूजा करें और पढ़ते हुए ही ये मंत्र और स्तोत्र आदि पढ़ते हुए ही पूजा के जो उपकरण है नैवेद्य आदि है जो भोग लगाया है भक्त उसको निःसरणम, निःसरणम का अर्थ है कि अल्टर से हटा ले, भगवान के यहां से उसको रखे, कहां रखे ट्रांसफर रूम में रखे, हमारे स्कान में ट्रांसफर रूम होता है और डीटी किचन होता है और भगवान को भोग लगाने के बाद फिर ट्रांसफर रूम में लाते हैं। ट्रांसफर रूम का मतलब होता है वहां से अब भक्तों के लिए ट्रांसफर होता है, चाहे जिसको जाए इसको जाए इसको जाए भगवान का प्रसाद। तो यहां पर यह बात कही जा रही ततो निःसरणम निसार्ज उपहरणम, उपहार को जो भी पूजा की वस्तुएं हैं पूजा की थाली भी वहां से हटा लेंगे और जो भोग लगाए हैं भगवान को जैसे मालपुआ या हलवा या कुछ भी खीर आदि जो भोग लगाए हैं वो हटा लेंगे निःसरण। कितना प्रैक्टिकल भक्ति योग स्कान में दिया जा रहा है आप सहज समझ सकते हैं, जो बातें शास्त्रों में लिखी गई है वो आंखों के सामने हो रही है स्पष्ट आ रहा है। तो भगवान के सामने से सबसे हटा ले और दत्वा आचमनम अर्चेत और भगवान का कुकुला करावे हाथ धुलावे आचमन करावे, ये अर्थ सब हटा कर इसके बाद भगवान को आचमनम दत्वा आचमन दे भगवान को और इसके बाद फिर पूजा करे, पूजा फिर करे और ढंग की पूजा और पूजा करके फिर ततः अस्तुवित फिर अस्तव करे फिर पाठ करे स्तुति पढ़े भगवान की स्तोत्रेण। स्तुति कैसे करे स्तोत्र के द्वारा स्तुति करे, अपनी स्तुति न बना ले, पहले से ही स्तोत्र हैं शास्त्रों में प्रसिद्ध उसी को पढ़े, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लगे विरह गाने या कुछ करने, वो शास्त्रों के स्तोत्र को ही पढ़े। स्तोत्रेण अस्तुवित भक्ति प्रहवेण चेतसा, और पुनः शब्द का प्रयोग कर रहे फिर भक्ति से नम्र चित द्वारा अर्थात स्नेह से भगवान की स्तुति पढ़नी है तो आनंद से पढ़े, केवल विधि पूरे करने के लिए नहीं, कीर्तन गाने में आनंद आना चाहिए। जैसे सवेरे हम लोग गाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी का पद शुरू में या नहीं आ रहा है, जिसमें भगवान के बहुत से नाम दिए गए हैं, भक्ति विनोद आश्रय वाला पद शुरू में क्या है ध्यान नहीं आ रहा है, आए हाँ ठीक। तो इस प्रकार से जो ये पद स्तोत्र आदि पहले से प्रसिद्ध है जिनको आचार्यों ने निश्चित किया है कि मंगलारती में ये गाना है, गुरु पूजा में ये गाना है, दोपहर में भगवान के भोग के लिए ये गाना है, ऐसे गाना है ये गाना है, तो उसके अनुसार ही गावे, ये कहने का आशय ये है। सब अपने अपने मन से न स्तुति बना ले, इस तरह गाना चाहिए और प्रेम से गाना चाहिए, भक्ति प्रवीण चेत सा और यज्ञो छिष्टम अवघ्राय और यज्ञ उच्छिष्ट, जैसे यज्ञ करने के लिए कहा गया था हवन आदि करने के लिए और भगवान की माला आदि उद्वास जो करेगा माला हटाएगा भगवान के गले से या चरण कमल से जब तुलसी जी को और माला को हटाएगा लेगा, निःसरणम का अर्थ आदर से लेना, तो उसको सूंघना चाहिए, सूंघ करके यज्ञोच्छिष्टम अवघ्राय अवघ्राण करे और पुनः अभ्यर्चे धरे फिर भगवान की पूजा करे। पूजा के कई प्रकार अलग अलग हैं, जैसे भोग लगाने के बाद पूजा है, तो भोग लगाने के बाद पूजा है आरती, तो अगरबत्ती देना, आरती करना है, करना है, करना है। तो अर्चना के कई कई अर्थ बदलते जाते हैं, और इसके साथ ही साथ भगवान की पूजा के साथ श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पतिम च परया भक्त्या महापुरुष चेतसा प्रिय तैस्तय रूप नमेत प्रेम शील स्वयं पति विभ्रियात सर्व कर्माणि पत्न्या उच्चा वचानी च। और जैसे भगवान की पूजा कर रही है पत्नी, उसी प्रकार से पतिम च, उसी तरह से, तरह का मतलब ये नहीं है कि वही सब आरती वगैरह चालू करे, कुछ बदल जाएगा ढंग प्रकार, लेकिन जितना प्रेम से, जितना आदर से भगवान की पूजा की है, तो महापुरुष चेतसा यह मान करके कि महापुरुष श्री विष्णु ही हमारे पति के रूप में है, पति की भी वैसे ही पूजा करे। यहाँ स्पेशल बात बताई जा रही, भगवान की पूजा तो समझ में आ जाती है, लेकिन आजकल पति की पूजा कही जाए तो स्त्रियों के लिए बहुत भारी ये क्रांतिकारी वाक्य हो जाता है, और कई प्रश्न आने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, पति को भगवान जैसा मान करके आदर किया जाए, जबकि यह पहले की नारियों के लिए बिल्कुल सामान्य बात थी, सहज श्रद्धा थी, पर आजकल के स्त्रियों के लिए ये बहुत लगता है कि बिल्कुल नवीन और बेढंगा पाठ पढ़ाया जा रहा है। पर शास्त्र बोल रहा है, मैं तो संस्कृत के श्लोक को बोल रहा हूँ, इसलिए कहने का साहस है। पतिम च पराया भक्त्या, पति की सेवा करे पराया भक्ति, परा भक्ति के साथ, बहुत प्रेम के साथ, महापुरुष चेतसा, यह मान करके कि भगवान विष्णु की ही पूजा कर रही हूँ, महापुरुष बुद्धि से, प्रिय तैस्तय उपनमेत प्रेमशील स्वयं पति। तो पति को ठीक तरह से प्रसाद देना, खिलाना पिलाना, मतलब ये प्रेम है। ऐसा नहीं है कि पति का फोटो रह करके और लगे आरती आदि करने, इससे कोई फायदा पति को नहीं है, और न तो उस प्रकार की भक्ति का ही अनुमोदन है। पर यह मानना चाहिए कि भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, भगवान है मेरे लिए, और उनकी पराभक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। पराभक्ति मतलब उनसे प्रेम करना चाहिए, और प्रिय तह तह उपनमेता प्रेमशील स्वयं पति, उपनयेता उन्नमेता है ना, उपनमेत। और इसके साथ साथ अब पति की, पति को शिक्षा दी जा रही है। प्राय स्त्रियां ये भी पूछा करती हैं कि स्त्रियों के धर्म की बहुत सी बात की जाती है, लेकिन पति का क्या कर्तव्य है ये कभी आप लोग प्रवचन नहीं करते। देखिए यहाँ पर प्रवचन है सुखदेव गोस्वामी का, प्रेम शील स्वयं पति, पति को चाहिए कि वो प्रेमशील हो, उसके स्वभाव में सहज प्रेम हो अपनी पत्नी के प्रति, सहज प्रेम, केवल फॉर्मालिटी नहीं कि विवाह हो गया है तब क्या करे, नाता निभाना है, प्रेमशील शब्द कहा जा रहा, उसके स्वभाव में पत्नी के प्रति सहज प्रेम होना चाहिए, सहज स्नेह होना चाहिए, और उसको जो जो प्रिय है पत्नी को, प्रिय तय तय उपनमित, यह पति को जो जो प्रिय है वो पत्नी करे, उसके लिए सब कुछ जुटावे करे, और प्रेमशील स्वयं पति, और पति को चाहिए कि वो प्रेम करे पत्नी से, और पत्नी को जो जो प्रिय वस्तु लगे, उसको जो अच्छा लगे उसके हित के लिए, वो उसको दे समय समय पर। ऐसा नहीं कि उसे सोचना पड़े ये वस्तु कहाँ से लाऊंगी, ये कहाँ से लाऊंगी, पूजा के लिए जो जरूरी है वो तो दे ही, इसके साथ साथ पत्नी को और भी जो जो प्रिय वस्तु हो तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए। तो स्त्रियों की बहुत इच्छा होती है कि मैं इस पर्व पर नया कपड़ा पहनूं, मुझे नया आभूषण चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि स्त्रियों में बहुत प्रतिस्पर्धा होती है, और देखते हैं कि हमारी सखी है गाँव की, ये स्त्री ऐसे पहनी है तो हमको भी चाहिए। तो ये पति का धर्म है कि वह उसके मनोभाव को पूरा करे, नहीं पूरा कर सकता तो पति क्यों बना है? ये उसका धर्म है, वास्तव में स्वाभाविक धर्म है, तो उसकी रुचि का पालन करे। और विभ्रियात सर्व कर्माणी पत्नी उच्चा वचा नीच, और पत्नी का जो भी उच्च या अवच नीच कर्म है, जो भी छोटा या बड़ा काम है, पति स्वयं करे। जितने दिन व्रत में रहेगी तो पत्नी जो जो जैसे घर साफ करना या और चीज करना, ये करना, वो तो कर नहीं पाएगी, भगवान की पूजा में लगी है। तो पति का कर्तव्य है कि और जो जो काम करते वो सारा काम पति करे, वो स्वयं उच्च अवच छोटा या बड़ा जो भी काम हो वो पति स्वयं करे। और पूजा की सारी सामग्री भी जुटावे और भी उसके लिए प्रिय कार्य करे जो भी करना हो। केवल पूजा काल में ही ये बात नहीं कही जा रही है, और समय में भी पति और पत्नी के सहज व्यवहार की बात की जा रही है कि पति और पत्नी का जो संबंध है बहुत अंतरंग संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है, इतने निकट का संबंध है किसी से नहीं होता है। पुत्र से कुछ काल के लिए रहता है जब तक बच्चा रहता है, लेकिन स्त्री के साथ जो पुरुष का संबंध है वो जीवन पर्यंत बहुत घनिष्ठ संबंध है। और वास्तव में इसके द्वारा तो सीखना चाहिए कि किस तरह भगवान से संबंध करना चाहिए, किस तरह समर्पण करना चाहिए। कहाँ की लड़की माता पिता के पास पढ़ी लिखी खेली खाई, लेकिन इसके बाद पिताजी अगर समर्पित कर देते हैं किसी वर को, तो सर्व धर्मान परित्यज मा में कम शरणम ब्रज, वो लड़की जीवन भर के लिए उस पति को समर्पित हो जाती है। क्या ये समर्पण सीखा नहीं जा सकता? सहज समर्पण होता है स्त्रियों में, इसलिए भागवत में तो कहा गया है कि स्त्रियों के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति अत्यंत स्वाभाविक और सरल है, अत्यंत सरल है। समर्पण तो सीखी ही है। तो इस तरह से पति का ये धर्म है कि वो पत्नी की आवश्यकताओं को पूरा करे, और उसके सर्व कर्माणी, उसके सारे कर्मों को जो व्रत के समय है वो स्वयं नहीं कर सकती है, भगवान की पूजा में है, तो पति का कर्तव्य है कि वो उसके सर्व कर्माणी विभ्रियात सभी कर्मों को पूरा करे। ऐसे मान लीजिए बच्चे को नहलाना है तो रोज माँ स्नान कराती है, उसको वस्त्र पहनाती है, स्कूल भेजती है, तो जब तक वो भगवान की पूजा में है, भगवान के व्रत में है, तो वो पति स्वयं ही बच्चे को नहलावे धुलावे और वस्त्र पहनावे और भोजन बनावे खिलाकर स्कूल भेजे। ये कहने का आशय है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन इस तरह से श्रील सुखदेव गोस्वामी तो कहते हैं सर्व कर्माणी पत्नी के पत्निया सर्व कर्माणी, पत्नी के जो भी सारे कर्म है वो पति स्वयं करे, और प्रेमशील होकर के करे, भार मान करके नहीं, आनंद से करे। कृतम एक तरेणापि दंपत्योरुभयोरपि पत्न्यां कुर्यात् अनर्हयाम अनर्हायाम पति रेतत् समाहितम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पति या पत्नी में कोई एक भी बल व्रत करता है, चाहे पति करे चाहे पत्नी करे, तो फल दोनों को मिलता है, दोनों को फल मिलता है। और ऐसा नहीं कि आधा आधा बांट करके फल मिलेगा, पूरा फल पत्नी को ही मिलता है और पूरा फल पति को ही मिलता है, और जबकि दोनों में एक ही कर्म कर रहा है। और कर्मों का दूसरा हिसाब है, भगवान के भक्ति का दूसरा हिसाब है। भगवान के भक्ति में यदि पत्नी कर रही है तो उसका पूरा फल पति को ही मिलेगा, और पति कर रहा है तो पूरा फल पत्नी को ही मिलेगा। इसे ये नहीं सीखना चाहिए तब एक ही करे और संतोष कर ले कि चलो कर ही रहा है तो फल मिलेगा, या कर ही रही है तो फल मिलेगा, पर ये हिसाब है। भागवत के वक्ता गंगा जी के तट पर ये झूठी बात नहीं बोल सकते हैं। दंपति में से, पति पत्नी में से कोई एक भी भगवान की भक्ति करता है तो दोनों को पूरा पूरा फल मिलता है। क्यों दोनों को फल मिलता है? इसलिए कि दोनों एक इकाई है, पुरुष अर्धांग है और पत्नी अर्धांगनी है, वो आधा अंग वो है और आधा अंग एक है, दोनों मिलते हैं तब पूर्णांग होते हैं। उनमें ऐसा संबंध है, वास्तव में ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ संबंध है पति पत्नी का। महाभारत में यक्ष ने पूछा है महाराज युधिष्ठिर से कि मनुष्य का ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र कौन है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि और जो संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं, वो तो मनुष्य देता है, परंतु किसी की पत्नी जो है, पत्नी भगवान के द्वारा दिया हुआ मित्र है मनुष्य का। वो भगवान जहां लिखते हैं, लिखे रहते हैं, वहीं उसका विवाह होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। अच्छा, देखने में लगता है कि मनुष्य समाज व्यवस्था करता है, पिताजी व्यवस्था करते हैं या समाज व्यवस्था करता है, विवाह होता है, कहीं नहीं होता है। जहां ईश्वर लिखा रहता है वहीं होता है। इसको ऐसे नहीं समझेंगे कि तब मतलब जहां होता है वहीं ईश्वर, ये ईश्वर लिखा है कैसे पता चलेगा? पता चले या न चले, लेकिन ये बात सत्य है। और शास्त्र कहता है कि पत्नी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र है, ये भगवान का दिया हुआ मित्र है, मनुष्य समाज का दिया हुआ नहीं है। इसलिए भगवान के इस उपहार का आदर करना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान ने जब इसको हमारा मित्र बनाया है, हमारे जीवन में सहायक बनाया है, तो भगवान के उस उपहार की सुरक्षा होनी चाहिए और प्रेम होना चाहिए। तो पति पत्नी में ऐसा संबंध है कि इसके लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर दोनों में एक भी भक्ति करे तो फल दोनों को मिलता है। और मान लीजिए पत्नी व्रत कर रही है, अगर वो अनर्हा हो जाए, अनर्हा अनर्ह का अर्थ अयोग्य, कभी व्रत के समय में कदाचित मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो गई या मासिक धर्म हो गया या कोई अड़चन पड़ गई, उसे अपने मायके जाना पड़ा, अपने माँ के पास जाना पड़ गया, ये संसार में होता ही रहता है। कोई नैहर में कोई अनिष्ट घटना हो गई या कोई विवाह शादी लग गया, और भी हो गया, पत्नी को जाना पड़ता है अपने माँ के पास या अपने भाई के पास, पिताजी के पास जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि पति स्वयं ही उस व्रत को पूरा करे, वो करे, पत्नी जैसे कर रहे थे उसको वो करे। यहाँ पर श्रील सुखदेव जी कहते हैं, कृतम एक तरेणापि दंपत्योर उभयोरपि पत्न्याम कुर्याद अनर्हायाम पति रेतत समाहिता। एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं समाहिता, जब पत्नी अयोग्य हो जाए अर्थात वह अस्वस्थ हो जाए किसी कारण से, तो पति को चाहिए कि बड़ी ही सावधानी और प्रेम से उस व्रत को करे। पत्नी के लिए तो पहले इतना नहीं कहा गया कि सावधानी और के साथ करे, वो तो करेगी ही, लेकिन पति हो सकता है लापरवाही करे, तो घड़ी देख करके पहले ऑफिस जाना चाहे, चाहे कुछ जल्दीबाजी में हो, इसीलिए उसके लिए समाहिता शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत सावधानी और एकाग्रता से पत्नी के उस व्रत को पूरा करे। इतना कहकर के श्रील सुखदेव जी कहते हैं कि विष्णु व्रत मिदम विभ्रम न विहन्यत कथंचन। विष्णु व्रतम इदम, यह विष्णु का व्रत है, भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है, इसको धारण करके इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर शिक्षा है कि भगवान का जप करने लगे तो ये नहीं कि आज किए कल छोड़ दिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, जीवन की शोभा है। और इसके साथ ही विप्राण स्त्रियों वीरवती सगंध बलिमंड नहीं अर्चेद अहरह भक्त्या देवम नियमम आस्थित। और नियम में स्थित होकर के पति या पत्नी जो भी है, जैसे भगवान की पूजा करते वैसे ब्राह्मणों की पूजा करें। पूजा का अर्थ होता है सत्कार करना। और वीरवती स्त्रियों की पूजा करें, जो साध्वी सधवा स्त्री सौभाग्यवती नारियां हैं, वो भी पूजा की अधिकारिणी है, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, ये व्रत करने वाले को बताया जा रहा है। और उनको देना चाहिए सगंध बलि मंडल, माला पहनाना ब्राह्मणों को और सौभाग्यवती स्त्रियों को, जो पति वाली स्त्रियां हैं सधवा, तो उनको माला पहनाना, गंध, चंदन लगाना और कुछ उपहार देना, प्रसाद देना, बलि और मंडन है, उनको श्रृंगार देना, यदि सामर्थ्य हो तो उनको आभूषण आदि देना, वस्त्र देना चाहिए। तो वस्त्र दान द्वारा, नैवेद्य द्वारा, चंदन और माला द्वारा ब्राह्मणों की और सौभाग्यवती स्त्रियों की भी पूजा करनी चाहिए। और चेद अहरह भक्त प्रतिदिन देवम नियमम आश्रित, और मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए नियम में रहकर। उद्वास्य देवम स्वे धामनी तन निवेदितम अग्रत अद्याद आत्म विशुद्ध्यर्थम सर्व कामर्धेत तथा। अब बताया जा रहा है कि भगवान की पूजा करने के बाद उनको वहां से हटाना चाहिए, और जहां पूजा के लिए रखे हैं तो उनको वहां से हटा करके स्वे सदन सदमनी भगवान के घर में उनको कर देना चाहिए। ये भगवान का घर होता है जहां वो अस्थि रहते हैं, पूजा के लिए उनको लाया जाएगा दूसरी जगह। मंदिर में तो भगवान अविचल रहते ही हैं अपने घर में, लेकिन गृहस्थों के घर पर छोटे छोटे ठाकुर जी उनको कभी कभी इधर उधर किया जाता है। चल प्रतिमा कहते हैं, भगवान की दो प्रकार की प्रतिमा होती है, अचल प्रतिमा और चल प्रतिमा। तो चल प्रतिमा को इधर उधर ले जा सकते हैं, जैसे कोई वृंदावन जा रहा है तो ले जा सकता है, कोई स्त्री अपने मायके चली गई या दूसरी जगह चली गई तो ले जा सकती है। कई भक्त हरिद्वार कथा में अपने ठाकुर जी को ले जाते हैं और गंगा जी में स्नान कराते हैं, तो गंगा जी जिनके चरणों से निकली हैं वही प्रभु गंगा जी में खूब नहाते हैं आनंद से, तो उसको चल प्रतिमा कहते हैं। तो भगवान को पूजा के स्थान से उद्वास्य विसर्जन करके स्वे धामनी स्थाप्य, अपने धाम में अपने घर में भगवान को रह करके, और तन निवेदितम जो भगवान को निवेदन किया गया था प्रसाद पहले अग्रतः, उसको अद्यात उस प्रसाद को खाए। इतनी पूजा आदि करने के बाद तब खाए, क्यों नहीं शरीर दिव्य हो जाएगा उस व्यक्ति का। तो जो पहले भगवान को अर्पित किया गया था नैवेद्य उसको अद्यात खाए, आत्म विशुद्धि अर्थम अपने को शुद्ध करने के लिए, अपने को उज्जवल करने के लिए भगवान का प्रसाद खाए, सर्व कामर्धे तथा। और भगवान का प्रसाद खाने से समस्त रिद्धियों की प्राप्ति होती है, मनोरथ पूरा होते हैं। तो भगवान का प्रसाद खाए। एतेन पूजा विधिना मासान द्वादश आयनम नित्वा थोपचरेत साध्वी कार्तिके चरमे हनी। एतेन पूजा विधिना, इस पूजा विधि से चाहिए कि वह साध्वी स्त्री, सदाचारिणी स्त्री साल भर करे, साल भर 12 महीने करे। ये दोनों बात क्यों कही जा रही है, साल भर तक इस व्रत को करे और फिर करें द्वादश मासन, द्वादश महीना करे। द्वादश महीना इसलिए करे 12 महीना कि कभी कभी 13 महीना हो जाता है साल में, तो एक महीना अशुद्ध होता है, मलमास कहते हैं उसको, या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो उस महीने, मान लीजिए उस महीने को लेकर के अशुद्ध महीने को भी और 12 महीना जोड़ दिया, नहीं तो उसको कहते नहीं, द्वादश मासन का मतलब है शुद्ध द्वादश महीना। अगर एक महीना अशुद्ध आ रहा है, ज्यादा महीना आ रहा है 13वां, तो उसमें भी भगवान की पूजा करे लेकिन उसको गिनती में न रखे, शुद्ध द्वादश महीना पूरा करे। इस तरह से पूजा करे, चलावे। और कार्तिक के अंतिम दिन इसको विश्राम दे पूजा को, कार्तिक के अंतिम दिन। तो आप सभी जानते होंगे कि भारतवर्ष में जो हम लोगों का एक संवत चलता है इस समय भी, तो वह चैत्र कृष्ण पक्ष के बाद प्रारंभ होता है। इसलिए भारतवर्ष में कहीं कहीं, जैसे गुजरात है और सब जगह, वहां पर अमावस्या से महीना प्रारंभ माना जाता है, नहीं पूर्णिमा से, पूर्णिमा से प्रारंभ माना जाता है महीना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से महीना प्रारंभ माना जाता है, शुक्ल प्रतिपदा से, और अमावस्या को महीने की पूर्णाहुति मानी जाती है। तो ये कहा गया था कि अगहन महीने के शुक्ल प्रतिपदा से चालू करना चाहिए, और साल भर करना है तो फिर कार्तिक के महीने के अंतिम दिन अर्थात अगहन के अमावस्या को इसको पूरा करना चाहिए। ये ठीक हिसाब है। हम लोग कार्तिक का चरम दिन पूर्णिमा को मानते हैं, प्रबोधनी एकादशी के तीन चार दिन के बाद जो पूर्णिमा पड़ती है उसको हम लोग कार्तिक का अंतिम दिन मानते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार और कहीं कहीं जैसे गुजरात में मैं देखा हूं कि अमावस्या को ही मास की पूर्णाहुति मानते हैं, पूर्ण मानते हैं। तो इसीलिए यहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कार्तिक के अंतिम दिन इस तरह पूजा आदि का विसर्जन करें, व्रत करें, और उसके बाद स्वभूते तो उपस्पृश्य कृष्णम अभ्यर्च पूर्ववत। तो कार्तिक के अंतिम दिन अर्थात आज के जैसे हम लोगों की गणना है तो अगहन के अमावस्या को स्वभूते प्रातः काल होते ही भोर में उठ करके उपस्पृश्य स्नान करके अपह उपस्पृश्य स्नान करके कृष्ण की पूजा करनी चाहिए पूर्ववत। जैसे साल भर उस स्त्री ने किया वैसे पूजा कृष्ण की करनी चाहिए। और पय श्रुते ने जो यह चरुणा सह सर पीड़ा, और पति का एक कर्तव्य है कि पति खीर बनावे। आगे लिखा है पय श्रुते ने जो यह चरुणा सह सर पीड़ा पाक जग विधान न द्वादश राहुति ही पति। पय श्रुते ने जो यह चरुणा चरु बनावे, पति का कर्तव्य है कि वह खीर बनावे, पायस बनावे जिसमें काफी मात्रा में घी डाले, सर्पी घी डाल करके बनाना चाहिए। दूध में बनाया जाता है चावल तो उसको पायस कहते हैं, लेकिन चावल दूध के साथ घी भी पड़ना चाहिए, घी पड़ा पर्याप्त, और उसमें गुड़ है तो इसको चरु कहते हैं। पहले चीनी फिनी सब नहीं था तो सर्पी सगुडम भी लिखा गया है एक जगह जगह। तो गुड़ डाल करके और चरु पकावे, दूध में पानी एक बूंद नहीं होना चाहिए, घी भले पड़ा हो पानी नहीं, उसमें सबसे सुंदर राइस पकावे उसको पायस कहते हैं। भगवान का नाम लेते हुए पकावे, मंत्र पढ़ते हुए, पाक यज्ञ विधान है ना, पाक यज्ञ का जो विधान है जो पुत्र उत्पन्न करने के लिए जिस विधि से चरु पकाया जाता है उस विधान के अनुसार मंत्र जप करते हुए ढंग से पति पकावे और वह अग्नि में द्वादश आहुति दे। द्वादश आहुति उस दिन, द्वादश आहुति से तात्पर्य यह भी है कि बारह बार स्तोत्र पाठ करके तब आहुति दे, यह मंत्र इस तरह से बोल बोल करके। आशीष श्रीसादाय द्विजय प्रीत समीरिता प्रणम्य शीर्षा भक्त जो भुंजित तद अनुज्ञया। तो पत्नी को चाहिए कि वह ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले, उन्हें प्रणाम करे। आशीष शीर्षादाय द्विजयी प्रीतयी समीरिता, ब्राह्मणों का और वैष्णवों का भी, वैष्णव भी द्विज हैं, तो मतलब ब्राह्मणेतर भी व्यक्ति कोई है भगवान विष्णु का भक्त है तो द्विज है, तो ब्राह्मणों का और वैष्णवों का आशीर्वाद ले। प्रीतय समीरित, जो आशीर्वाद ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर के बोले, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, यशस्विनी भव, चिरंजीवी भव, इस तरह से जब वाणी से बोलते हैं ब्राह्मण, समीरिता प्रीतय समीरिता, प्रसन्न ब्राह्मणों के द्वारा वैष्णवों के द्वारा जब आशीर्वाद बोला जा रहा हो तो उसको सुने, स्वीकार करे और प्रणम्य शीर्षा भक्त्या, और फिर सिर से जमीन को, सिर को जमीन पर रख करके प्रणाम करे, और प्रणाम करके उनकी आज्ञा जब हो वे लोग कहें कि बेटी प्रसाद खा लो, तुम खाओ खाओ, तो उसको चरु को, उस पायस को खाए। आचार्यम अग्रतः कृत्वा वाग जतः सबंध भी दद्यात पत्नी चरो से समसुप्रजस्तम सुसौभगम। सॉरी, वो पति के लिए कहा जा रहा है, पहले पति खाए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और वैष्णवों का आशीर्वाद लेकर के पति पहले उस चरु को खाए, और जो शेष बचे वह आचार्य को आगे करके, जो यज्ञ कराए हैं आचार्य को आगे करके उनके सामने अपने बंधु बांधवों के साथ सामने ही वह चरु, वह पायस अपनी पत्नी को दे खाने के लिए। तो वह जो शेष चरु है, यज्ञ का हिस्सा, यज्ञ का फल चरु, जिसको पायस कहते हैं, खीर, वह सुप्रजस्तम सुसौभगम, वह सुंदर संतान को देने वाला होता है और सुंदर सौभाग्य को देने वाला होता है। उस चरु को खाने से स्त्री का सौभाग्य हमेशा रहता है, अर्थात उसके पति जीवित रहते हैं, सुखी रहते हैं, निरोग रहते हैं, और सुंदर संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है वह चरु। इस प्रकार से उसको खाए। इतना कह करके अब श्री सुखदेव गोस्वामी इस व्रत के फल को बता रहे हैं, क्या क्या इसका फल मिलता है, इसको कल कहा जाएगा, और कल कुछ बच्चे अनुमोदन भी करेंगे। मैं तो आज भी चाहता था कि किसी किसी का नाम आवे, लेकिन कोई नाम ही नहीं आया, आज उनकी तैयारी नहीं थी। कल जिनको करना वो अपन लिख लेंगे थोड़े थोड़े शब्दों में, और लिखा हुआ पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।